Hare Krishna lecture by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj on Bhagavatam 6th Canto 4th Chapter Text Number 44 on 4th of December 2011.
हम स्वागत करते हैं और विशेष स्वागत फिर से एक बार हिज़ुर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का हरि बोल। हरे कृष्णा
समय मुझे 8 बजे की फ्लाइट से बॉम्बे जाना था इसलिए कल सूचना नहीं दी आज के क्लास के विषय में तो लोग मेरे स्वामी ने मुझे ये कहा रात को कि मैं रुकूं उनके लिए कोई जरूरी काम है माना सुबह की फ्लाइट आ रहे हैं तो मुझे क्लास के थोड़ी देर बाद नोएडा जाना है इसलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेंगे बस भक्तों ने कहा क्लास तो उसको प्रयास करेंगे थोड़ा उपदेश देने के लिए
Thank you. Thank you.
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज का श्लोक और तात्पर्य जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है हर वैष्णव और वैष्णवी के लिए और खास करके जिनकी श्रद्धा है प्रचार के कार्य में और ग्रंथों के वितरण के कार्य में। श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 4 टेक्स्ट 44 प्रीतो हम ते राजा नाथा यत्ते स्योद्ब्रह्मानं तापा ममेसा नमो भूतानां यत् भूयुसुर विभूतया प्रीतो हम ते प्रजानाथ यते सो ब्रह्मानं तपः महेशा कामो भूतानां यद् भूयासुर विभूतया पितुहं ते प्रजानाथ यत् स्यो ब्रह्मानं तपः ममेशा कामो भूतानां यद् भूयासुर विभूतया प्रीतो हम ते प्रजानाथ यते स्यो ब्रह्मानं तपः उमेशा कामो भूतानां यद् भूयासुर विभूतया
Thank you. यह प्रामाणिक आंदोलन है जिसका गंतव्य हर भक्त जीव को कृष्ण भावनामृत के पद तक उठाने का प्रयास करते हुए उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। यदि कोई इस पद को प्राप्त नहीं होता तो वह निरंतर भौतिक जगत में कभी ऊपरी लोकों में तो कभी निम्नतर लोकों में रहा आता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में पूछ हुआ है, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, कभी भक्त जीव अविद्या में उतर जाता है और कभी उससे छूटकर कुछ राहत पाता है। यह है भक्त जीव का जीवन। प्रजापति दक्ष भक्त जीवों को उत्पन्न करके उन्हें जीवदान देकर मुक्ति के लिए अवसर प्रदान करने का लाभ प्रदान कराना चाहते हैं। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण की शरण ग्रहण करना। यदि कोई कृष्ण की शरण में जाने का प्रतिशत देने के उद्देश्य से संतान उत्पत्ति करता है तो उसका पितृत्व बहुत उत्तम है। इसी तरह जब गुरु बद्ध जीवों को कृष्ण भावनामृत भावित होने का प्रशिक्षण देता है तो उसका गुरुत्व सफल होता है। यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीवों को कृष्ण भावनामृत बनने का अवसर प्रदान करता है तो उसके सारे कार्यों का समर्थन भगवान करते हैं जो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, प्रीतो अहम। पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरणों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि बद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करके तथा उन्हें ऐसा करने की सारी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे कार्य ही अपने कल्याण कार्य हैं। ऐसे कार्यों के द्वारा ही प्रचारक या कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान द्वारा मान्य होता है। जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में पुष्टि की है, अर्थात जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आता है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक मुझे प्रिय है और न कभी होगा।
हरे कृष्ण। तो आप भक्तों ने ध्यान से सुना अनुवाद तात्पर्य, ध्यान से ख्याल से ये अनुवाद तात्पर्य कि हमें प्रिंट आउट बनाने चाहिए और सब भक्तों को बांटना चाहिए। ओम ज्ञान वंदे हम श्री गुरु श्री सुधाकरकमल श्री गुरु वैष्णवाचार्य श्री रूपं कार्यजातं जयकण्ठरघुनाथान्वितं सन्तजीवं सारयतं सारभूतं वैरं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा। हे कृष्ण सिंधु दीनबंधु जगद्गुरु गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते सत्यकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
हनुमान चलाया
कृपा सिंधु गए प्रजा जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। पितो हम ते प्रजानाथ यते सोतम हम तपा मेषा कामो भूता नाम यद्वयसुर विभूतया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक के साथ प्रभुपाद जी ने तीन पेज का तात्पर्य दिया है, ढाई पेज का, ढाई पेज का तात्पर्य दिया है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हो इतना महत्वपूर्ण संदेह श्लोक है। इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं परम भगवान स्वयं। भगवान ये श्लोक किसको सुना रहे हैं? प्रजापति दक्षा, दक्षा का प्रजा का परिचय है। प्रजापति प्रजा के उत्पन्न में दक्षा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दक्षा सदानंद व्यक्ति को एक दो तीन चार सौ बच्चे पैदा कर लें, पर दक्षा एक साथ लाखों बच्चों को पैदा कर लें, इनमें यही योग्यता है। तो दक्षा है प्रचेतस के पुत्र, और प्रचेतस थे मृणाल प्रचंड बाली के पुत्र। मृणाल प्रचंड बाली की कथा आप भागवतम के चौथे स्कंद में पढ़ते हो। मृणाल प्रचंड बाली के दस बेटे थे जिनका नाम था प्रचेतस। खुद मृणाल प्रचंड बाली एक तरह से तो उनके पास अध्यात्मिक ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने अपने दस बेटों को छोटी आयु में ही भेज दिया तपस्या करने के लिए। अगर पिता के पास ये ज्ञान नहीं हो तो क्यों भेजे? पर खुद वो जुड़े हुए थे कर्म कर्ण और इंद्रिया तृप्ति के कार्यों में। पर नारद मुनि जी बड़े दयालु हैं, भक्तों का यह भाव रहता है दया, इसलिए वैष्णव को कहा गया है परा दुखा दुखी। परा दुखा दुखी का अर्थ क्या है कि जब वैष्णव भक्त देखता है कि कोई बच्चों को भी चुप रखेगा, जब वैष्णव भक्त देखता है कि भौतिकवादी प्रयास कर रहे हैं भौतिक कार्यों के द्वारा सुख पाने के लिए, तो उसे अत्यंत दुख होता है और वो प्रयास करता है उनकी अज्ञानता को दूर करने के लिए। और नारद मुनि वो तो हर स्थान में पहुंच जाते हैं। मृगारी शिकारी का भी उद्धार उन्होंने किया है कि ना? ध्रुव महाराज जब घर से निकलने वाले थे जंगल जाने के लिए, उनका उद्धार की भी उन्होंने सोचा। तो नारद मुनि पहुंच गए मृणाल प्रचंड बाली के महल में, और जब उनके महल में पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत किया। पर मृणाल मुनि देख सके कि राजा जो है पहले ठीक था, उसको हाथ क्यों लगाया? मृणाल मुनि देख सके कि राजा जो है कर्म कर्ण कार्य में जुड़ा हुआ है, सोचते हैं कि कर्म कर्ण द्वारा सुख प्राप्त होगा। कर्मकन कार्य एक प्रकार का सौदा होता है भगवान के साथ, हम ये करेंगे पर इसके बदले में हमें ये सुविधा चाहिए। साथ में जो राजा था शिकार भी करता था। तो नारद मुनि ने कहा चलो मुझे इसका उद्धार करने दो। नारद मुनि जब महल में पहुंचे, जैसे कई बार आप प्रचारक अपने मित्र के या रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हो इस भाव के साथ, प्रयास करने दो शायद एक कृष्ण भक्ति में जुड़ जाए। अगर ये भाव नहीं होता तो आज लाखों भक्त थोड़ी होते सारे विश्व में। अगर आज सारे लाखों कृष्ण कॉन्शियसनेस के भक्त हैं, क्योंकि हर भक्त प्रयास कर रहा है दूसरों को भी भाग्यवान बनाने के लिए। तो नारद मुनि गए उनके महल में। नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि मिले राजा से। राजा ने कहा कि मैं अज्ञानता में हूं। नारद मुनि ने कहा कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कष्टों से छुटकारा और असली सुख की प्राप्ति। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है सातवें स्कंद में, न ते विदम स्वतः गतिम है वैष्णव, लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। जैसे देखा जाए सारे विश्व में लोग सुख के पीछे हैं, चाहे यहां पशु हो या मनुष्य योनि में हो, पर मानव योनि के पश्चात प्राप्त करने पर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि क्या है असली सुख। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि लोग ये नहीं जानते कि असली सुख क्या है। तो नारद मुनि ने कहा बड़ा प्रचीन बाणी से कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कष्टों से छुटकारा। और कितने प्रकार के कष्ट हैं? चार प्रकार के कष्टों से छुटकारा और असली सुख की प्राप्ति। और फिर आगे जाकर नारद मुनि ने एक रूपक कथा सुनाई जो थी पुरंजन की थी, वो महाराज प्रचीन बाड़ी की कथा, पर उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से रूपक कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि पुरंजन एक राजा थे। पुरंजन असल में पुरंजन एक रूप से हम सब हैं। पुरंजन का मतलब क्या है? जो शरीर का भोगता है। तो फिर नारद मुनि ने इस प्रकार राजा को दिव्य ज्ञान दिया, जिसका ये परिणाम हुआ कि राजा महल राज्य शासन छोड़कर गए जंगल में भगवान तपस्या करने के लिए। उनके जो 10 बेटे थे प्रक्षेत्र, ये गए थे तपस्या का पालन करने के लिए। भागवत में कहा गया है ये घटना बीती थी सतयुग में। हमारा क्या सौभाग्य है कि आज कलयुग में भी हमें सतयुग की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त हो रहा है व्यासदेव और महानाचार्यों की कृपा से। अंदाजा लगा सकते हो ये जो घटना जिसकी हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, ये घटना बीती थी सतयुग में। तो प्रचेत 10,000 साल के लिए तपस्या उन्होंने की, तो आज आधुनिक युग की प्रजा कह सकती है 10,000 साल दिस इज माइथोलॉजी, ये कल्पना है, वास्तविकता नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं? सतयुग में लोगों की अवधि थी 1,00,000 साल, त्रेतयुग में लोगों की अवधि थी 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000, और कलयुग में क्या है 100 भी ज्यादा से ज्यादा। एक रूप से 40 साल से पत्ता कटना शुरू हो जाता है, बीमारियां बढ़ते जाती है, किसी के घर में जाओ पूरा शो दवाइयों का कैबिनेट होता है। 40 साल से आज के वातावरण में मुझे कई डॉक्टर्स ने कहा है, विदेशों में भी बच्चों को बीमारी हो रही है जो पहले बूढ़ों को होती थी। बच्चे पैदा हो रहे हैं उन बीमारियों के साथ जो एक समय बूढ़ों को होती थी। तो 100 साल की उम्मीद भी, हाँ 100 साल भी देखा जाए बहुत कम व्यक्ति जी पाते हैं ना, और 100 साल तक अगर कोई जी भी लें तो 50 बीमारियां होंगी। तो पर कलयुग में लोगों के सतयुग में लोगों की अवधि थी 1,00,000। तो प्रचेतस ने 10,000 सालों के लिए बड़ी गहरी तपस्या की, और उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया जो मंत्र उन्हें प्राप्त हुआ था शिव जी के द्वारा। वैष्णव यथा शंभु, भगवान शिव जी जो हैं वैष्णव यथा शंभु, बड़े ऊंचे कोटि के वैष्णव हैं। शिव जी ने प्रचेतस को, शिव जी ने देखा कि प्रचेतस बड़े गंभीर विद्यार्थी हैं आध्यात्मिक जीवन के, उन्होंने सीधा मंत्र दिया जिसके द्वारा परम भगवान का गुणगान हो। शिव जी का एक और नाम है आशुतोष, मतलब कि बड़ी सरलता से प्रसन्न होते हैं और सरलता से क्रोधित भी हो जाते हैं। और प्रचेतस ने 10,000 सालों के लिए उस मंत्र का उच्चारण किया जो कि उन्हें हुआ था शिव जी के द्वारा। तो शिव जी जो हैं ऊंचे कोटि के वैष्णव हैं, वैष्णव यथा संभव, और शिव जी स्वयं भगवान कृष्ण के उपासक हैं। अब भगवतम के 10वें स्कंद में विकर्षूरा की कथा पढ़ते हो। विकर्षूरा असुर था और उसने एक वर प्राप्त कर लिया था। विकर्षूरा ने नारद मुनि से पूछा कि मैं कैसे किन्हें प्राप्त कर सकता हूँ जल्दी। तो वो गए थे कैलाश पर्वत में, जहाँ की बड़ी अपने शरीर के चमड़े को काट कर यज्ञ में डाल देते। शिव जी जब पहुंचे वहां उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो, अपने शरीर को नुकसान दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। बोली ये कृपा से उन्होंने सब चमड़ा जो काट के अर्पण किया था वापस जोड़ दिया। तो इससे पहले शिव जी ने पूछा क्यों कर रहे हो, उसने कहा क्यों, मुझे एक वर चाहिए आपसे। तो शिव जी दयालु हैं आशुतोष, उन्होंने कहा कि ठीक है चिंता मत करो, उनके शरीर में उनके साथ वो सारा चमड़ा जो काट कर अपन किया था वो जोड़ दिया। पर फिर उन्होंने वर मांगा। क्या वर मांगा, जहां भी मैं हाथ रखूं उसके नीचे जो भी है चीज वो नष्ट हो जाए। जब शिव जी ने यह सुना तो उन्होंने कहा ऐसा वर मैं कैसे दूं, ये इस वर द्वारा तो हानि हो जाएगी। शिव विकर्षूर ने कहा पर आपने वचन दिया है पूरा करोगे, आपको देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ओम कहके वर दे दिया। जैसे ही उन्हें वर प्राप्त हुआ, असुर ने क्या किया, अपना हाथ फैलाया शिव जी के ऊपर रखने के, उसकी बुरी नजर थी पार्वती के साथ, और शिव जी को फिर दौड़ना पड़ा। जहां भी वो भागे विकर्षूरा उनके पीछे था। फिर कहां पहुंचे, स्वेदर द्वीप में। भगवान को पता था भगवान हाजी के साक्षी हैं, तो भगवान ने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया था। और जब विकर्षूरा आया दौड़ते दौड़ते थका हुआ था, भगवान ने ब्रह्मचारी ने पूछा क्या है क्या है क्या है, बताओ क्या है क्या है, मैं तो तुम्हारे खानदानी मित्र हूं। उसने कहा कि शिव जी आए हैं क्या, मैं उनका पीछा कर रहा हूं, उन्होंने मुझे वर दिया है कि जब भी मैं हाथ रखूंगा वो चीज नष्ट हो जाएगी। भगवान जिन्होंने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया था, उन्होंने कहा तुम जानते नहीं, जब से उनका झगड़ा हुआ है दक्ष के साथ, ससुर के साथ, उनके बल की योग्यता कम हो गई है। पर ये तो देखो कि वर झूठा है या सच्चा। अगर झूठा वर था फिर तो तुम्हें अधिकार है मानने का, तो अगर सच्चा वर है अधिकार से तो पाप हो जाएगा। लेकिन सुरेंद्र हाँ ठीक कह रहे, ठीक तो कह रहे हो। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा अपने सिर पर, क्या हुआ, उन्हें सिर पर। तो शिव जी की सुरक्षा भी परम भगवान ही करते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी इंद्र जी सबसे में सब स्वीकार करते हैं क्या, कि आप ही हो परम भगवान। तो प्रचेतस कि तपस्या से परम भगवान बड़े प्रसन्न थे। क्यों, क्योंकि 10 के 10 भाइयों का एक ही उद्देश्य था भगवान की प्रशंसा, और उनके मन में कोई और भाव नहीं था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या, विष्णु की प्रशंसा। चाहे आप गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण की संतुष्टता। और फिर प्रचेतन निकले तपस्या से, उनकी शान विवाह हुआ वृक्षों की बेटी के साथ, और फिर उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था दक्ष। तो दक्षा का अर्थ है जो प्रजा के उत्पादन में बड़ा एक्सपर्ट हो। तो भगवान ने दक्षा को जिम्मेदारी दी थी प्रजा बढ़ाने के लिए। तो दक्षा ने प्रजा को बढ़ाया, जैसे मैंने कल कहा था दक्षा दो समय प्रकट हुए थे। पहले प्रकट हुए थे स्वयंभु मानव के राज्य के समय, और जिस दक्षा की कथा हम पढ़ने हैं वो प्रकट हुए थे चक्षुष मनु के राज्य के समय। तो दक्षा की जिम्मेदारी थी प्रजा को बढ़ाना, और अपने मन से ही उन्होंने देवता और अनेक और योनियों का उत्पादन का उत्पन्न किया था। और पर प्रजा दक्षा ने देखा कि वो प्रजा को इतनी अच्छी तरह नहीं बढ़ा पा रहा, उसके कार्य में कुछ कमी है। तो फिर दक्षा ने सोचा मुझे परम भगवान के शरणागत होने दो और गहराई से। जैसे भगवान कहते हैं ना, चार परिस्थितियों में व्यक्ति मेरी शरण में आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम। तो दक्षा ने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि मुझे और गहराई के साथ परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज, उनकी सौतेली माँ ने उनको रोक दिया था पिता की गोद में बैठने से। ध्रुव महाराज ने बड़ा अपमान महसूस किया जब वो रोते हुए अपनी माता के पास गए। माता ने कहा मैं तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती, तुम्हारे पिता मुझे नौकरानी के समान मानते हैं, कोई दे सकता है मेरा सहयोग? हाँ, सुना है भगवान दे सकते हैं। तो भगवान कहाँ प्राप्त होंगे, जंगल में। तो ध्रुव महाराज गए थे इस भावना के साथ, क्योंकि तपस्या का यह परिणाम होगा कि वो परम भगवान को आकर्षित कर सकेंगे और उनकी कृपा से उन्हें एक बड़ा विशाल राज्य प्राप्त हो, जो जिसकी तुलना कोई और राज्य नहीं कर पाएगा। पर उनका भाव था कोई भौतिक सुख, पर विश्वास ये था, साधन था कि हमें परम भगवान की को प्रसन्न करना है। पर तो दक्षा सेवा कर रहा था भगवान की, भगवान ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी थी प्रजा बढ़ाने के लिए। पर दक्षा ने देखा कि उनके कार्य में कुछ कमी है, तो वो गए तीर्थ के स्थान के पास पर्वत के, वहां बड़ी गहरी तपस्या पालन करने के लिए, और उन्होंने अनेक प्रकार की तपस्या की। वो साथ में हंस गुहिया मंत्रों का उच्चारण किया। ये जो हंस गुहिया मंत्र हैं जिन आप इस अध्याय में पढ़ते हो, इन मंत्रों को आप भगवतम के 36 खंड में प्राप्त कर सकते हो। और कहा गया है इन श्लोकों में कि हंस गुहिया मंत्र जिनका उच्चारण दक्षा ने किया, ये मंत्र शुरू से ही वैदिक शास्त्रों में है। ये नहीं कि दक्षा ने नए मंत्रों का उच्चारण किया, ये मंत्र थे वैदिक शास्त्रों में और उन्होंने उन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे अगर आप भक्तों में भगवान का गुणगान करने की इच्छा है, तो हमारे ब्रह्म संहिता श्रीमद् भागवतम में अनेक सुंदर स्तुतियां हैं। गजेंद्र की स्तुति, कुंती देवी की स्तुति, यहाँ आप दक्षा द्वारा स्तुतियों, किसी भी आप प्रार्थना की स्तुतियों का उच्चारण कर सकते हो। भागवतम इज नथिंग बट अ प्रेयर बुक। भागवतम एक ग्रंथ है जिसमें अनेक भक्त अपने सुंदर स्तुतियों द्वारा क्या कर रहे हैं, परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और जब आप इन प्रार्थना मंत्रों को पढ़ो, आप देखोगे सारे मंत्रों का भाव बिल्कुल अलग है। ये नहीं कि दक्षा ने वही भाव प्रकट किया जो कि कुंती देवी ने प्रकट किया था। अगर जब आप इन मंत्रों को पढ़ोगे और अगर आप कंपैरिजन देखो आप देखोगे कि हर श्लोक के द्वारा भगवान के एक अलग गुण का की प्रशंसा की जा रही है। ये है इन भक्तों का यह की बुद्धि। तो दक्ष ने उन मंत्रों का उच्चारण किया जो हंस गुहिया प्रार्थना का, जिसमें भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। तो परम भगवान दक्षा की तपस्या से और हंस गुहिया मंत्रों के उच्चारण से बहुत ही प्रसन्न हो गए। और भगवान ने क्या किया, भगवान स्वयं आए उस स्थान में जहां की दक्षा अपनी तपस्या कर रहे थे। जैसे कि भगवान ध्रुव महाराज की तपस्या से बड़े प्रसन्न थे और 5 साल के बालक था ध्रुव, 6 महीने उन्होंने तपस्या की और भगवान स्वयं वहां आ गए दर्शन देने के लिए। तो परम भगवान को अगर आप आकर्षित करना चाहते हो तो ना तो आपको धन की आवश्यकता है, ना सुंदरता की, ना भौतिक टैलेंट की, ना खूबसूरती की, किस चीज की आवश्यकता है, प्रेम भक्ति की, केवल भक्ति की। और जैसे भगवान ने गीता में कहा है, पत्र सोम फलम तो यम यो में भक्ति प्रयोजनी, अगर तुम प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता भी मुझे अर्पण करोगे उसे मैं क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। और अगर प्रेम और भक्ति नहीं है और आप सोने के चांदी में भी समोसा अर्पण करोगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान अगर किसी चीज के भूखे हैं, वैसे तो हर रूप से पूरे हैं, ओम पूर्णा मादा पूर्णा मिला, पर किस चीज के भूखे हैं, प्रेम और भक्ति के। तो परम भगवान जब प्रकट हुए दक्षा के समक्ष, दक्षा इतनी प्रसन्न हो गई, वो सो हैप्पी, उनकी सारी इंद्रियों में खुशी की भावना, खुशी के भाव प्रकट हुए। हमारी अनेक इंद्रियां हैं, हम प्रयास करते हैं इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, हम सोचते हैं इन नेत्रों के द्वारा पोर्नोग्राफी देखेंगे तो आनंद आएगा, हम सोचते हैं कानों के द्वारा अगर हम भौतिक फिल्मी धुन भौतिक चर्चा सुनेंगे तो आनंद आएगा, जीभ के द्वारा अगर हम बिना भेदभाव के कुछ चखेंगे तो हमें आनंद आएगा, और नाक के द्वारा कोई परफ्यूम वगैरह सुनेंगे तो आनंद आएगा। पर इन्हीं इंद्रियों को आप आनंद दे सकते हो आध्यात्मिक कार्य में जोड़ने के द्वारा, जैसे नेत्रों के द्वारा भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन लो, पैरों के द्वारा भगवान के मंदिर चल के जाओ या मोटर चला के जाओ या स्कूटर चला के जाओ, और हाथों के द्वारा भगवान की सेवा करो। तो ये है नेक अंगों का सदुपयोग। तो दक्षा बहुत ही प्रसन्न हो गए जब उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, भगवान स्वयं वहां आ गए थे उनकी तपस्या की खुशी के कारण, तपस्या के कारण, और वो भगवान खुद वहां आए। वो दक्षा ने तुरंत भगवान को देखते ही धन्यवाद प्रणाम किया, उनकी सारी इंद्रियां खुशी से भर गई थी। पर भगवान ने फिर कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। कल के श्लोक में भी इसी प्रकार का भाव भगवान ने प्रकट किया था, और आज के श्लोक में भी यही भाव भगवान प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, वो भगवान कह रहे हैं कि हे प्रजापति दक्ष, तुमने संसार कल्याण तथा बुद्धि के लिए घोर तपस्या की है। तो भगवान तपस्या से खुश होते हैं। अगर परम भगवान को आकर्षित करना चाहते हो तो तपस्या बिना असंभव है। तपस्या का अर्थ क्या है, तपस्या का अर्थ है आप वॉलंटियरली त्यागो इंद्रिय तृप्ति की सुविधा, वॉलंटियरली, ये नहीं जबरदस्ती। अगर गरीब या व्यक्ति कहे मैंने नाइट क्लब नहीं जाना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके पास सुविधा है और आप नहीं उसके प्रति उस कार्य को नहीं स्वीकार करो क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रतिकूल है तो वो है तपस्या। तो भगवान ऋषभदेव भी कहते हैं तपो देवियम पुत्र का ये न सत्वम तस्व हे मेरे पुत्र, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है कठिनाई के साथ, इसका दुरुपयोग मत करो, तपस्या का पालन करो। किस लिए? देखा जाए भौतिक जीवन भी तपस्या का ही आजकल, महंगाई के जमाने में रहना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, और वो भी तपस्या है। तो यहां कहा जा रहा है तपो दिव्यम, तपस्या का पालन करो। किस लिए? भगवान की खुशी के लिए। जैसे कि हम जब कृष्णा भक्ति में जुड़ते हैं तो हमें ये शिक्षा दी जाती है सुबह जागो मंगल आरती के लिए। जो मंदिर में हैं वो तो जागते ही हैं और जो घरों में रहते हैं उन्हें भी जल्दी जागना चाहिए अगर आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये भी एक तपस्या है। जीव की आदत है बहुत एक प्रजल पकड़ने की, तो जीव के लिए तपस्या है केवल कृष्ण कथा करना। हमें तो प्रजल्पा की आदत है, बचपन से दूसरों की आलोचना की आदत है, वो जीव की तपस्या है वैदिक शास्त्रों का उच्चारण करना। तो हमें तो आदत है बिना भेदभाव के खाना, और नहीं तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खा लेंगे। और तपस्या क्या है? खाओ तो केवल कृष्ण प्रसाद खाओ और कृष्ण प्रसाद के अलावा नहीं। ये नहीं कि हम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो चलेगा। यह आप गृहस्थ हो, हम रहेंगे गृहस्थ आश्रम में प्रशासन के नियम के अनुसार, यह है तपस्या। नहीं तो भी हमें ये जीवन बन जाता है। तो ये फिर हमने मंत्रों का उच्चारण रोज करना है, ये नहीं आज किया कल नहीं किया। हमें दीक्षा के समय ये जिम्मेदारी दी जाती है 16 माला ध्यान पूर्वक करना, तो हमने रोज करना है। एक समय किसी भक्त ने पूछा प्रभुपाद से, इतनी सेवा है प्रभुपाद ने कहा फिर सोना कम करो पर माला जरूर समाप्त करो। तो ये है तपस्या। तो भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं तपस्या, तो प्रजापति दक्ष की तपस्या से परम भगवान बड़े प्रसन्न थे। जैसे प्रभुपाद जी ने अनेक पत्रों इत्यादि में कहा है अगर तुम 16 माला का जाप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे तो बिना शंका के विदाउट एनी डाउट यू विल गो बैक टू गॉड। तो बिना शंका के भगवान तो ये है तपस्या इस कलयुग में। तो भगवान यहां तो दक्ष ने तो घोर तपस्या की। ध्रुव की तपस्या घोर तपस्या थी। ध्रुव महाराज जब जंगल गए थे भगवान को आकर्षित करने के लिए, पहले महीने उन्होंने क्या खाया? फल जानवरों का जो बंदर खाते हैं, वो भी 3 दिन में एक बार। अगर हम आपको कहें 3 दिन में एक बार प्रसाद खाना तो आप शायद इसको को छोड़ दें। हमें तो 3 बार दिन में खाने की आदत है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर है ना, और बीच में स्नैक्स, हर घंटे को स्नैक भी चाहिए। वो ध्रुव महाराज खा रहे थे 3 दिन में एक बार, और दूसरे महीने 6 दिन में एक बार क्या? सूखा घास, ड्राई ग्रास। ग्रीन ग्रास तो कहते हैं स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है, वो बोले सूखा घास खा रहे थे 6 दिन में एक बार। तीसरे महीने बिल्कुल खाना बंद कर दिया, 9 दिन में एक बार क्या? थोड़ा सा जल बस। तो ये है घोर तपस्या। हमें जो तपस्या दी गई है इस कलयुग में वो तो बड़ी सरल तपस्या है। अगर हमें ऐसा उपदेश दिया जाए 3 दिन में एक बार खाओ, 6 दिन में एक बार खाओ, 9 दिन में एक बार पानी पियो, तो शायद ही कोई कर पाए। ये है घोर तपस्या। हमारे तो बड़ी सरल तपस्या है, जितना खाना है खाओ और कृष्ण प्रसाद खाओ। आप हमारे स्थान मंदिरों में जाओ खा सके, फेस्टिवल टाइम में आपको पिज्जा भी मिलेगा, स्पेगेटी भी मिलेगी, प्रिंसा कृष्ण प्रसाद। अगर आप चाइना में जाओ, हांगकांग में इस्कॉन का रेस्टोरेंट है मंदिर में, वहाँ पूरा चाइनीज रेसिपी मिलेगी। आप मिलान में हमारा एक रेस्टोरेंट है गोविंदा, वहाँ हर प्रकार की इटालियन कुकिंग मिलती है, पर प्रसाद के रूप में। तो खाओ तो केवल कृष्ण प्रसाद खाओ। आप नाचना चाहते हो, गाना चाहते हो, करो, जितना नाचना है नाचो। कौन सा स्थान है जहाँ लोग सुबह 4:30 बजे नाचना शुरू कर देते हैं? सुबह 4:30 बजे तो सब गहरी नींद में होते हैं, है कि नहीं? पर इसको मंदिरों में मंगल आरती के समय, और यहाँ तो 4:30 बजे होती है। मणिपुर, मणिपुर का नाम सुना है? तो मणिपुर के इस्कॉन मंदिर में 3:30 बजे मंगल आरती होती है क्योंकि वहाँ सनराइज जल्दी होता है। तो वहाँ के भक्त 2:30 बजे उठते हैं। वो बड़ा खूबसूरत मंदिर है मणिपुर में, आपको देखना चाहिए। और वहाँ 3:30 बजे लोग सुबह जागना नाचना शुरू कर देते हैं तो आपने नाचना है तो नाचो भगवान के लिए। एक समय सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का नंबर 2 शहर है, तो वहाँ मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था, हम लोग का प्रोग्राम चल रहा था एक हॉल में, और पड़ोस के एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें हमने भी एक हॉल किराए पर लिया हुआ था और किसी और डांस पार्टी ने भी। तो हमारे हॉल में कीर्तन हो रहा था और भक्त नाच रहे थे, और पड़ोस के हॉल में लोग शराब पी रहे थे, बैंड प्ले कर रहा था और बॉलरूम डांसिंग हो रही थी। पर साउंड प्रूफ दीवार शीशे नहीं थे, तो हमारी कीर्तन की आवाज उनके हॉल में जा रही थी, उनकी आवाज हमारे हॉल में आ रही थी। तो कई लोग उनके हॉल के जिज्ञासु थे, क्यूरियस, आए हमारे हॉल में देखने के लिए अंदर क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा भक्त बड़े उत्साह से नाच रहे हैं, वेरी एंथुजियास्टिक। तो उन्होंने पूछा हमारे भक्तों से, तुम लोग शराब नहीं पी रहे, लड़की का हाथ नहीं होल्ड कर रहे हो, तुम लोग इतना नाच रहे? हम लोग तो नाचते हैं शराब पीकर। तो ये है आध्यात्मिक जीवन, कि अगर आप तपस्या का पालन करो तो उसके द्वारा खुद ही खुद अनेक साधन है, नाचने के, गाने के, भगवान की खुशी, भगवान की सेवा में। तो इस कलयुग में घोर तपस्या को चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़ा सरल बना दिया है। चैतन्य महाप्रभु जी भंडारा करते थे, तो हरिदास ठाकुर ने अपने शरीर त्यागा, तो हरि चैतन्य महाप्रभु इतना बड़ा भंडारा किया और सबको जबरदस्ती खिलाया। अक्सर इसको में हम देखते हैं कि लोग जब जुड़ते हैं तो पतले होते हैं और थोड़े समय में ओवरवेट हो जाते हैं। तो पर वो भी तपस्या है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि तुम्हारी संसार कल्याण इस में बड़ा प्रसन्न, मेरी भी यही इच्छा है कि इस जगत में सब प्राणी सुखी रहे। बड़ा अच्छा उपदेश भगवान क्या कह रहे, मेरी भी ये इच्छा है कि सारे प्राणी सुखी रहे। भगवान हमारे परम पिता हैं, उनकी क्या इच्छा है, हम सब सुखी रहे। प्रभुपाद जी अनेक समय ये उदाहरण देते थे, जैसे सब साधारण स्थिति में माँ बाप की इच्छा है कि उनकी औलाद सुखी रहे, तो परम भगवान की भी इच्छा है कि हम सब सुखी रहें। आप चैतन्य चरितमृत में हरिदास ठाकुर की महिमा पढ़ते हो, हरिदास ठाकुर नामाचार्य थे जो दिन में 3 लाख बार भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, कुछ खाते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे, 3 लाख बार जाप समाप्त करने से पहले ना ही किसी से कुछ चर्चा भी करते थे। और हरिदास ठाकुर, क्योंकि उन्होंने मुसलमान खानदान में जन्म लिया था, इसके पीछे बड़ा गहरा इतिहास है, वो कभी भी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नहीं गए दर्शन लेने के लिए। सनातन गोस्वामी भी कभी नहीं गए, रूप गोस्वामी भी कभी नहीं गए, क्योंकि हालांकि उनका जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, उन्होंने मुसलमान राज्य के शासन में नौकरी की थी। पर हरिदास ठाकुर तो नहीं गए, उनकी भजन कुटी से उन्हें जगन्नाथपुरी का दर्शन प्राप्त हो रहा था। और चैतन्य महाप्रभु जी के जो सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर, वो रोज उन्हें जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद जगन्नाथ जी का लाकर देते थे खाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु रोज उनके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन देने के पश्चात हरिदास को मिलने आते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु गए हरिदास के पास, और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण माही आनिया, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान राधा और कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। किस लिए? पतितों को धार के लिए। पति पवान ही तो तवा बतारा मोह समा पति तो प्रभु न पाए बे आला। आप जो हो सब अवतारों में सबसे दयालु हो, आप प्रकट हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु गए हरिदास को मिलने, और हरिदास से उन्होंने कहा, हरिदास ये बताओ ये म्लेच्छों की और यावनों का उद्धार कैसे होगा? म्लेच्छ और यावना किसे कहा जाता है? म्लेच्छ और यावना उसे कहा जाता है जो कि शास्त्र के विपरीत कार्य करता है, जो कि वैदिक संस्कृति को आदर नहीं देता, ना ही गायों की सुरक्षा करता है। जैसे भारत में आज देखा जाए गायों पर बड़ा कितना अत्याचार हो रहा है। एक तरह से हमने नियम बनाए हैं गाय को कत्ल खाने नहीं भेज सकते, पर गाय को गोवर्धन से उठाकर बांग्लादेश तक ले जा रहे हैं लालची व्यापारी। तो और पुलिस वाले सह लेते हैं, छुप जाते हैं पैसा खाने के बाद। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन म्लेच्छों को यावना का उद्धार कैसे होगा बताओ। और महाप्रभु क्योंकि परम पिता है उन्हें चिंता थी, तो हरिदास ने कहा हे मेरे स्वामी आप चिंता मत करो कि हा राम वाले का नाम बात है, किसी न किसी रूप से ये बज्जी अगर हरि का नाम लेंगे ध्यान पूर्वक हरि का नाम लेंगे तो फिर जन्म मृत्यु के बंधन से वो बच जाएंगे। तो इससे आप देखते हो कि भगवान की कितनी चिंता रहती है। जब भगवान देखते हैं हम बज्जी भौतिक संसार में जुड़े हुए हैं तो अत्यंत दुखी होते हैं। तो इसलिए जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्त घर घर जा रहे हैं गीता बांटने के लिए, उनके भक्त घर घर जाते हैं प्रचार करने के लिए, उनके भक्त यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, उनके भक्त लाख रुपए की नौकरी त्याग कर भगवान की सेवा में जुड़े हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं ये भक्त ये सब त्याग रहा है, ये कठिनाई का पालन कर रहा है किस लिए? मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए। भगवान की क्या इच्छा है? भगवान की इच्छा है जैसे आप इस श्लोक में पढ़ रहे हो और जैसे कि इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं, भगवान कहते हैं हम सब सुखी बने। और भगवान ये जानते हैं कि असली सुख का क्या माध्यम है। ये जो भौतिक सुख धन कमा लो ये कमा लो ये असली सुख नहीं है। असली सुख है, असली सुख प्राप्त हो सकता है जब परम भगवान के शरणागत हो, और कोई साधन नहीं। तो इस भक्तों को यही चिंता रहती है। जैसे सातवें स्कंद में आप प्रहलाद महाराज की शिक्षा पढ़ते हो, प्रहलाद महाराज ने कहा हे भगवान मुझे अपने स्वार्थ की चिंता नहीं, मैं तो सीख गया हूं कि कैसे आपके शरणागत होना चाहिए, ना ही मुझे अपने उद्धार की चिंता है, ना ही मैं पहाड़ों में जाना चाहता हूं, ना ही मैं जंगल में जाना चाहता हूं, ना ही मैं एकांत के स्थान में जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं जहां आपके बदजीव हैं, जो आपको भूलने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुख की स्थिति को, जो दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदल रहे हैं। आजकल हम क्या कर रहे हैं, शरीर बूढ़ा हो रहा है तो हम जाते हैं मेकअप कराने, इसलिए कोने कोने में ब्यूटी क्लिनिक्स खुल गई है। आप जहां आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आप जाते हो डाई करने के लिए, हाँ, और आपके दांत गिर रहे हैं तो आप नकली दांत लगा रहे हो, आपके नेत्र देखने की शक्ति घटते जा रही है तो आप चाहते नहीं कि दुनिया को पर दुनिया पहचाने, आप चश्मा पहनते हो तो आपके लिए कॉन्टैक्ट लेंस बन गए हैं, आप थोड़े बहरे हो सुनने में तो आपको हियरिंग एड मिल जाता है, पहले तो हियरिंग एड जरा बड़ा होता था दूर से ही दिख जाता था, आज तो इतने छोटे हियरिंग एड आ गए हैं कि आप पहचान भी नहीं सकोगे ये बहरा है। तो आज क्या प्रयास किया जा रहा है, दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। पश्चिम देशों में एक नई किस्म की दुकानें खुली हैं जिनको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी एजिंग शॉप, तो एंटी एजिंग पता नहीं भारत में खुली है कि नहीं पर विदेशों में खुल गई है। तो एंटी एजिंग शॉप में क्योंकि विदेशों में बहुत हाई परसेंटेज आबादी अभी बूढ़ी ओल्ड एज में है, जवानों की संख्या घटते जा रही है, हिंदुस्तान में जवानों की संख्या काफी है परसेंटेज वाइज, तो एंटी एजिंग शॉप हर जगह खुल रही है। और एंटी एजिंग शॉप में क्या है, मसाला जिसके द्वारा आप बुढ़ापे पर को छुपा सको, तो छुपा लोगे तो कब तक छुपाओगे। तो परमात्मा ने कहा मुझे अपने स्वार्थ की चिंता नहीं, मुझे उनकी चिंता है जो दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां भगवान कह रहे हैं दक्ष से, मेरी भी यही इच्छा है कि इस जगत में सभी प्राणी सुखी रहे, तो बस भगवान की इच्छा है। तो आप लोग जो गीता मैराथन कर रहे हो, किसकी किसकी खुशी के लिए गीता मैराथन कर रहे हो, किसकी खुशी, हाँ, भगवान की खुशी के लिए, क्योंकि भगवान की इच्छा क्या है कि हम सब गीता पढ़ें, हम सब गीता पढ़ेंगे तो अपने जीवन को सुधारेंगे, और गीता नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र का उपदेश नहीं सुनेंगे, संतों की संगत नहीं ग्रहण करेंगे तो हम अज्ञानता में रहेंगे, है कि नहीं। तो भगवान की इच्छा है कि हम सब उनके शरणागत हों। आगे गीता के अंत में भगवान क्या कहते हैं, सर्व धर्म परिता जब हम एकम हम तो हम सर्वे पापे व मोक्ष हम सर, ये भगवान की इच्छा, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो आप पूछोगे अगर भगवान की शरण में आए तो हमें क्या मिलेगा, भगवान क्या कहते हैं, बिना शंका के तो मेरे धाम जाओगे। तो भगवान के धाम करके क्या गुण है, एक तो भगवान के धाम का नाम है वैकुंठ, वैकुंठ का अर्थ क्या है, जहां नो चिंता, चिंता से रहित, जहां की हर व्यक्ति इस पृथ्वी के खूबसूरती से करोड़ों गुना ज्यादा खूबसूरत है, वैकुंठ धाम के जो पुरुष हैं यहाँ के पुरुषों से करोड़ों गुना ज्यादा खूबसूरत है, वहां की जो स्त्रियां हैं यहाँ की स्त्रियों से लाख करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है, पर दोनों का आकर्षण है कृष्ण, एक दूसरे के प्रति नहीं। और वैकुंठ धाम में हर व्यक्ति के अपने हवाई जहाज भी हैं, आप लोग में किसी के पास है प्राइवेट जेट, प्राइवेट प्लेन, वहां हवाई जहाज सजा हुआ है हीरे मोतियों के साथ, उनका कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। और आपको कोई एयरपोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती। पर हम जब भी कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो ये जगत ही अच्छा है, ये जगत का नाम है खुंता जगत, जहां क्लेश ही क्लेश, पर हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं, हम सोचते नहीं नहीं यहाँ ही आराम है, हम यहाँ से निकलना नहीं चाहते। एक समय एक ऐसा, तो भगवान की इच्छा क्या है कि हर प्राणी सुखी बने, इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के कल्याण की मेरी इच्छा को पूरी करो। तो भगवान की वो दक्षिण है तपस्या की किस लिए, पूरे जगत के कल्याण के लिए, और इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे। तो आप सब जो प्रचार की सेवा में जुड़ते हो, ये जो सेवा है जगत के कल्याण के लिए, जैसे हमारे भक्त हाई नाम में जाते हैं, सन नगर से 10 भक्त रोज जाते हैं हरी नाम में, जैसे हम हरी नाम में जाते हैं। अब हरी नाम में हम जब जाते हैं, हरी नाम में इतनी शक्ति है कि जो पेड़ हैं वो भी जब हरी नाम सुनते हैं इसके लाभ उन्हें भी आता है। तो जो वैष्णव है वो पूरे जगत के कल्याण की चिंता करता है, केवल अपने स्वार्थ की नहीं। ये नहीं हमें तो अपनी मुक्ति चाहिए, बस दूसरे खड्डे में जाए हमें। दो प्रकार के भक्त होते हैं, गोष्ठ नंदी और भजन नंदी। जो गोष्ठ नंदी भक्त हैं वो अपना स्वार्थ और संन्यास के स्वार्थ की चिंता करते हैं, जो भजन नंदी हैं वो केवल अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं। तो जो वैष्णव हैं वो पूरे संसार के कल्याण की चिंता करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के एक भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव दत्ता। वासुदेव दत्ता एक समय चैतन्य महाप्रभु जी के पास गए और कहने पूछा उनसे, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा मांगो। वासुदेव दत्त में तो इतने गुण हैं कि 100 मुखों से भी हम उनका गुणगान नहीं कर सकते, और भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। क्या थे उनकी इच्छा? आप कृपा करके पूरे समाज का उद्धार कर दो, जो उनका पापों का परिणाम है वो मुझे भुगतने दो। इसलिए वासुदेव दत्त को प्रहलाद महाराज का अवतार माना जाता है, और इसी प्रकार का भाव हाँ महाराज रंती देव ने भी 9वें स्कंद में प्रकट किया है। तो ये है भक्तों का भाव। तो आप कहोगे पर महाराज हमारे में तो भाव है ही नहीं। सच बात है, ये तो प्रहलाद महाराज वासुदेव दत्ता महाराज दक्षा में भाव है, हम तो बड़े मतलबी हैं, हम तो अपने स्वार्थ का ही सोचते हैं। हमारे में वैसा भाव है ही नहीं। हम बेशक ऐसा भाव नहीं है, पर अगर आप सुनोगे ध्यान से पढ़ोगे महान संतों के भावों को और आप केवल चिंतन करोगे ये भाव अनुभव करने के लिए और प्रयास करोगे इस भाव का पालन करने के लिए, तो आपको भी वही लाभ मिलेगा। तो भगवान आपको भी कहेंगे मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं। तो हम जो ये प्रचार के कार्य करते हैं, ये करते हैं गुरु भगवान की प्रशंसा के लिए। प्रभुपाद जी ने इस विषय पर बल दिया, क्यों प्रभुपाद जी ने इस विषय पर बल दिया? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि पूरा समाज सुखी बने। प्रभुपाद जी चाहते थे पूरा समाज सुखी बने, और प्रभुपाद जी को पता था कि आज भी सुख हमारे जो वैष्णव आचार्य हुए हैं उन्हें पता है कि असली सुख चाहिए तो असली सुख प्राप्त होगा कैसे, भगवान के शरणागत होगा। तो हम सब भक्तों को इस सेवा में जुड़ना चाहिए। ये जो सेवा है समाज विश्व के कल्याण के लिए है। वैसे देखा जाए समाज नरक की ओर जा रहा है, पर हम अगर उन्हें कृष्ण भक्ति दें तो उनका उद्धार हो सकता है। हम सोचते हैं कई बार कलियुग का बहुत गहरा हो गया है, लोग रुचि नहीं लेंगे। रोज रुचि लेंगे। प्रभुपाद जी अकेले गए थे कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए। जैसे आप जानते हो विदेशों में जाने से पहले प्रभुपाद जी ने भारत में भी बड़ा संघर्ष किया, बड़ा प्रयास किया, इस सफलता नहीं हुई। प्रभुपाद जी फिर अमेरिका पहुंचे, रास्ते में दो हार्ट अटैक हुए, तो प्रभुपाद जी ने दूसरे हार्ट अटैक के बाद सोचा कि मेरी योजना सफल नहीं होगी, मुझे वापस भारत लौट जाना चाहिए। फिर भगवान सपने में आए, तीसरे दिन भगवान ने कहा, भगवान नाव चुधारे थे, प्रभुपाद जी बैठे थे नाव में, भगवान ने कहा घबराओ मत, तुम्हारी योजना सफल होगी। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका भी पहुंचे तो पहले एक साल के लिए लगभग किसी ने साथ नहीं दिया, उल्टा लोग डिस्करेज कर रहे थे। उन दिनों में काफी भारतीय सन्यासी अमेरिका जाते थे, उन्होंने कहा स्वामी जी तुम तो इंडिया से अभी आए हो, हम तो यहाँ के पुराने खिलाड़ी हैं, कोई आपके ऐसे संदेश को नहीं सुनेगा, कोई नहीं ये संदेश सुनेगा, आप भी हमारे जैसे सूर पतलून पहनो और छुई खाती देखा रखाओ। तो प्रभुपाद जी को विश्वास था कि भगवान का संदेश अगर यथारूप प्रस्तुत किया जाए तो लोग स्वीकार करेंगे। और प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, एक टॉमकिंस स्क्वेयर पार्क है न्यूयॉर्क में, आज अगर आप उस पार्क में जाओ तो वहां उन्होंने प्लैक लगा दिया है सरकार ने कि द फाउंडर ऑफ द हरे कृष्ण मूवमेंट स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम हियर। ये प्लैक न्यूयॉर्क सरकार ने कोई 6 महीने पहले लगाया है कि एक जिस पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी ने अपना कीर्तन आरंभ किया था। प्रभुपाद जी जब भारत से गए थे तो एक मृदंगा ले गए थे और 200 सेट ले गए थे श्रीमद भगवतम के प्रथम स्कंद के। तो प्रभुपाद मृदंगा में नहीं ढोकी ले गए थे, तो ढोकी लेकर उस पेड़ के नीचे बैठकर हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे थे। आस्ते आस्ते लोग आए और प्रचार करते गए प्रभुपाद, और आज लाखों भक्त हैं सारे विश्व में, 500 मंदिर हैं, ग्रंथों का अनुवाद हो गया 70 से अधिक भाषाओं में। तो कहने का अर्थ है ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि इस कलियुग में कोई रुचि नहीं लेगा, कलियुग में भी आज हजारों भक्त रुचि ले गए। आपके दिल्ली शहर में एक समय रहने का कोई ठिकाना नहीं था, बड़े मंदिर में जो मूर्तियां हैं राधा पार्षद सरस्वती की वो अलग अलग मकान में उनको हम रख रहे थे। 1975 में भारत में इमरजेंसी हुई थी है ना, तो हमारा जो मालिक मकान था, हमारा मंदिर था 19 टोडरमल लेन में, आप बंगाली मार्केट गए हो कोई तो वहाँ टोडरमल लेन है, तो वहाँ किराए का मकान था, 2000 रुपये महीना किराया हम दे रहे थे। तो मालिक मकान ने कहा घर खाली करो, हमने कहा हम घर खाली करके कहाँ जाएंगे। उन दिन भारत में इमरजेंसी हुई थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो ये था सरकारी नौकर, तो उसके पास काफी ताकत थी, तो उसने राधा प्रसाद शादी को उठाकर सड़क में फेंक दिया, सड़क में फेंक दिया, तुम लोग घर खाली नहीं कर रहे, पुलिस पुलिस के भाग कर सारा सामान बाहर फेंक दिया और मूर्तियों को भी। फिर हमें फिरोज गांधी रोड में घर किराए पर दिए और मूर्तियों को वहां ले गए। तो पहले एक मंदिर भी नहीं था भगवान के लिए, आज आपके दिल्ली में भी 9 मंदिर हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करोगे और प्रचार करोगे, प्रयास करोगे, तो वह संभव कार्य भी संभव हो जाएगा। चैतन्य चरितमृता में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से कठिन कार्य सरल बन जाता है, उनकी कृपा के बिना सरल कार्य नहीं होता। तो आप सब जो जुड़े हो इस प्रचार के कार्य में, आप ये जो कार्य कर रहे हो पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। और जैसे आप भगवान की दामोदर लीला में देखते हो, यशोदा माता प्रयास कर रही थी भगवान को बांधने के लिए पर सफल नहीं हो रही थी, फिर जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ इतनी मेहनत कर रही है, फिर उन्होंने उन्हें बांधने की सुविधा दी। तो इसी प्रकार जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त मेरे विश्व के कल्याण के लिए इतना गहरा प्रयास कर रहा है, तो उसे भी सफलता देंगे। और प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, नतीजा आपके हाथ में नहीं है, और भगवान आपके प्रयास को देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के इस श्लोक के साथ दो पेज का तात्पर्य भी है, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं और जिनका निचोड़ ये है कि हम जीव हैं और हमें क्या ब्रह्मंड ब्रह्मित कौन भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा भाई भक्ति सभी। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम भटक रहे हैं अनेक योनियों में, वो तो जो भाग्यशाली व्यक्ति है उसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है, ये भक्ति का बीज उगता कैसे है, ये भक्ति का बीज उगता है किस माध्यम से, श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। और जितने ध्यान से आप श्रवणम कीर्तनम करोगे उतनी तेजी के साथ आपका भक्ति का बीज उगेगा। और भक्ति के बीज की सुरक्षा के लिए भक्तों की संग में हमें रहना चाहिए। ये शिक्षा महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दी है, जो आप मध्य लीला में पढ़ सकते हो। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी गीता के 18वें अध्याय के दो प्रसिद्ध श्लोकों का उपयोग करते हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, सबसे प्रिय कौन है जो मेरा प्रचार करता है, उसे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना। तो आप में से कौन कौन भगवान के प्रिय भक्त बनना चाहते हो, सभी सब सबको बैठे बैठे कृपा चाहिए या प्रयास करके। जैसे कई बार हेड ऑफ स्टेट आता है इंडिया में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑनरी डिग्री दे देती है पीएचडी, बाकियों को मेहनत करनी पड़ती है पीएचडी कमाने के लिए। तो कई बार लोग भक्त सोचते हैं हाँ हमें तो बैठे बैठे कृपा मिल जाता ठीक है, और कई कहते हैं नहीं हम मेहनत करेंगे कृपा के लिए। हाँ तो मेहनत करोगे तो कृपा जरूर मिलेगी। तो आप सबसे निवेदन है सबके सब ये मैराथन में जुड़िए। आपके मंदिर की योजना है 2.25 लाख गीता बांटने की, पिछले साल आप सब भक्तों ने मिलकर 2 लाख गीता बांटी थी, और ये संभव है अगर हम सब प्रयास करें। भगवान ने गीता में क्या क्या है, अनया चिंतयाम समम, अगर तुम श्रद्धा से प्रयास करोगे कुछ कमी भी होगी तो मैं उसे दूर कर दूंगा। तो अगर हमारे में ये योग्यता नहीं भी है तो हम श्रद्धा से प्रयास करें, भगवान उस कमी को क्या करेंगे, दूर कर देंगे। तो संक्षेप में आज के श्लोक में परम भगवान दक्षा से चर्चा कर रहे हैं। परम भगवान दक्षा को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हारी गहरी तपस्या का भाव था विश्व का कल्याण। क्योंकि दक्षा ने जब देखा कि वो प्रजा का उत्पादन ठीक नहीं कर रहा तो उन्होंने भगवान के सहयोग के लिए तपस्या उठाई। और भगवान कह रहे हैं कि मेरी भी यही इच्छा है कि हर व्यक्ति असली सुख प्राप्त करे, दूसरे शब्दों में हर व्यक्ति मेरे शरणागत हो। और आप सब प्रयास कर रहे हो भगवान के शरणागत होने के लिए, आप सब प्रयास कर रहे हो दूसरों को जोड़ने के लिए, इसलिए बिना शंका के परम भगवान आपके प्रयास से अत्यंत प्रसन्न है। अगर प्रयास करते जाओगे तो आवश्यक ही सफलता मिलेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कहना को अपना ओके। एनी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ले लेंगे, काफी देर हो गई। कोई प्रश्न, combination of the two, but Bhajananandi is higher than Goshtanandi. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इन द सेंस. इनका प्रश्न ये है, कईयों की इच्छा होती है कि वो भजन करें, प्रचार नहीं करें. तो मनमानी हम खुद निर्णय करते हैं या गुरु की कृपा से, गुरु के आदेश के अनुसार. तो हमने उत्तर में कहा, गोष्ठ नंदी भक्त जो है भजन नंदी से ज्यादा ऊंचे हैं भगवान की सेवा में. और हमारे संप्रदाय में जहाँ हमारे जितने आचार्य थे वो गोष्ठ नंदी थे. मतलब क्या भजन, गोष्ठ नंदी का ये मतलब ये नहीं कि भजन ही करो और भजन के साथ प्रचार भी करो, और ये नहीं कि सारा दिन भजन करो सेवा से बचने के लिए. भजन भी करो और सेवा भी करो. अगर सभी भजन करते तो आप सब कहाँ होते आज, आज इधर होते, ये खाली मंदिर होता. हाँ
इतने महाभू का आदेश है कि जन्म सार्थक करी कर तो होगा. कई बार चर्चा का विषय होता है जन्म सार्थक कर होगा, मतलब पहले जन्म सार्थक करें फिर गुरुपात करें, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है या प्रोपर करके हमारा जन्म सार्थक.
दोनों साथ साथ करो. जैसे इस्कॉन मंदिरों में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, आपको जिम्मेदारी दी जाती है जाप करने की, यह करने की, ये सब नियमों का भी पालन करो और साथ में प्रचार भी करो. पहले हम भक्तों को ट्रेनिंग भी देते हैं, 6 महीना 1 साल इंटेंसिव ट्रेनिंग. ये थोड़ी कि आज भक्त मंदिर में आता है कल हम उसको भेज देते हैं प्रचार करें, पहले ट्रेनिंग भी देते हैं. तो आप सब जुड़े हो मैराथन में? कौन कौन जुड़े हैं मैराथन में? मैंने देखा कि कईयों का हाथ ऊपर नहीं है. ये उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद जिनका हाथ नहीं था ऊपर वो भी उठा लेंगे. मैं सोच रहा था ये तात्पर्य और अनुवाद हमें प्रिंट आउट करके सबको देना चाहिए. क्या ख्याल है? ओके, हरे कृष्ण.